ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। पिछले एक हफ्ते से भगवान श्री कृष्ण की रासलीला की चर्चा चल रही है। हर शाम अलग 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 दृष्टिकोण से देख के प्रयास ये रहा है कि श्री रासलीला की सही समझ सही धारणा विशेष करके सभी भक्तों को हो जाए और साथ साथ जो अन्य भी हैं जिनके मन में हो सकता है कोई गलत धारणाएं हैं उनका भी खंडन हो सके। तो इस तत्व का स्पष्टीकरण करने के लिए इतने दिनों से तरह तरह से अलग अलग दृष्टिकोण से सही तत्व की स्थापना करने का प्रयास हो रहा है। कल ये बात निकली थी कि जब कोई व्यक्ति किसी विषय के बारे में सुनता है, बोलता है, सोचता है, तो उस व्यक्ति को देखकर उसके चरित्र, उसकी विचारधारा, उसकी मनोवृत्ति, उसका रहन सहन, उसके बोलचाल, उसके उसूल, उसकी आशाएं, इन सब को ध्यान में रख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि जिस विषय में वो रमण करता है, जिस विषय के बारे में वो सुनना चाहता है या बोलना चाहता है, तो वो विषय किस प्रकार का होगा। तो जैसे व्यक्ति की चेतना है, वैसे ही उस प्रकार के ही विषय में वो रमण करेगा। जो विषयी आदमी है, जो भोगी आदमी है, जो सोचता है कि संसार का भोग करना ही जीवन का उद्देश्य है, तो वो संसार के भोग के विषयों के बारे में ही सुनेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, बात करेगा। तो संसारी विषय जो पत्रिकाएं हैं, उपन्यास है इत्यादि, वो किस श्रेणी के हैं वो अनुमान लगा सकते हैं इस बात को देखकर कि किस प्रकार के लोग इन चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार रासलीला के विषय में कौन ऐसे लोग हैं जो ध्यान करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, बल्कि पूछते हैं, और पूछते ही नहीं बल्कि उसमें प्रवेश करना अपना जीवन का सबसे ऊंचा ध्येय मानते हैं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि बड़े बड़े वैष्णव जो संत हुए हैं, बड़े बड़े भक्त हुए हैं, वो रासलीला को बहुत पूजनीय मानते हैं, बहुत शुद्ध मानते हैं, पवित्र मानते हैं। कई उदाहरण इसके बारे में दिए गए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं रासलीला के बारे में बहुत चर्चा किया करते थे अपने निकट के पार्षदों के साथ, जन सामान्य में नहीं, सबके सामने तो केवल संकीर्तन हुआ करता था, और रासलीला जैसे विषय के बारे में तो केवल निकट के अपने पार्षदों के संग में, अन्य भक्तों से भी नहीं बात करते थे। चैतन्य चरितामृत में यह बताया गया है, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कई बार रासलीला का स्वप्न देखते थे, और स्वप्न देखते देखते उनको बहुत आनंद आता था, बहुत सुख मिलता था, और जब सपना टूट जाता था तो उनको बड़ा दुख होता था। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे एक सन्यासी, वो क्यों रासलीला के बारे में सपने देखेंगे, और सपना जब टूट जाता है तो उस इतना दुख क्यों उनको होगा यदि ये रासलीला शुद्ध और पवित्र नहीं होगी तो। और चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण तो भौतिक वस्तु में कभी रमण नहीं करते हैं। सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण दिया गया कल, नारद जी का, शिव जी का, और यहां तक कि लक्ष्मी देवी का भी। अंत में चर्चा यह हुई थी कि लक्ष्मी देवी नारायण के वक्षस्थल पर नित्य निवास करती हैं, परंतु वो श्री कृष्ण के वृंदावन की रासलीला में प्रवेश नहीं कर पाए। लक्ष्मी देवी का भाव स्वकीय कहलाता है और गोपियों का भाव परकीय कहलाता है। तो ये हमारी अगली बात है जिसके बारे में आज थोड़े समय के लिए हम चर्चा करेंगे और फिर आगे बात को भी हम बढ़ाएंगे। तो यह स्वकीय और परकीय इन दो शब्दों को जानना आवश्यक रहेगा। जब विवाह के भीतर संबंध होता है तो उसको स्वकीय कहते हैं और विवाह के बाहर जब संबंध होता है तो उसे परकीय कहते हैं। विवाह के भीतर पुरुष को पति कहते हैं और विवाह के बाहर पुरुष को उपपति कहते हैं। अब विवाह के बाहर इस भौतिक जगत में मनुष्यों को संबंध रखना ये बहुत ही निंदनीय है, धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध है और ये बड़ा पाप है, सारे समाज को संस्कृति को नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये मूल आध्यात्मिक तत्व के विरुद्ध है। मूल आध्यात्मिक तत्व क्या है? मूल आध्यात्मिक तत्व ये है कि जीव ये आत्मा ये भगवान का अंश है, जीव प्रकृति है और भगवान पुरुष है, इसलिए जीव भगवान द्वारा भोग्य है हमेशा। परंतु इस परम तत्व को भूलकर जब जीव दूसरे जीव को भोग करना चाहता है तो फिर ये एक गलत सिद्धांत है, तो ये मिथ्या है, माया है, महामाया। इसलिए ये धर्म के खिलाफ है, परम तत्व के भी खिलाफ है। वैसे इस दुनिया में जो भी संबंध हम देखते हैं वो एक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी पति नहीं है, क्योंकि संबंध जो भी है वो केवल शारीरिक स्तर पर रहते हैं। भगवान के धाम में भगवान ही एकमात्र पति हैं, इसलिए उनके जो शक्तियां होती हैं उनका मूर्तिमान रूप भगवान की योग माया शक्ति उनको देती है, उनको अलग सा एक व्यक्तित्व प्रदान करती है और वह गोपियां हो जाती हैं। तो भगवान की ही शक्तियों को एक व्यक्तित्व मिलता है और भगवान फिर उनके साथ एक रस का, भक्ति के रस का आदान प्रदान करते हैं, एक संबंध जोड़ लेते हैं। तो वैसे देखा जाए तो श्री कृष्ण के अलावा जितने भी उनकी शक्तियां हैं वो सब उनके ही द्वारा भोग्य हैं और श्री कृष्ण उनके पति हैं। तो वैसे देखा जाए तो सब कुछ स्वकीय ही है कृष्ण के संबंध में। तो हालांकि गोपियों के वृंदावन में पतियां थीं और उनके पति के साथ उनका संबंध स्वकीय था, लेकिन कृष्ण के साथ परकीय था, फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, जब हम समझेंगे कि गोपियां भी भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं, तो ये भी स्वकीयत्व ही है, क्योंकि ये गोपियां भी श्री कृष्ण की शक्ति हैं और कुछ भिन्न नहीं है। ये बात थोड़ी सूक्ष्म है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कोई बाहर बताएंगे उनको जरा नीचे। तो इस संसार में परकीय जो संबंध होता है वो अच्छा नहीं है, परंतु श्री कृष्ण के लिए विवाह का कोई प्रश्न नहीं आता है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण स्वकीय रस का आस्वादन करते हैं अपने महिषियों के साथ, अपने रानियों के साथ, लेकिन वृंदावन में श्री कृष्ण परकीय रस का स्वाद लेते हैं। तो परकीय रस तो हम सोचेंगे कि भाई ये कृष्ण भी परकीय रस का स्वाद लेते हैं तो ये तो धर्म के विरुद्ध है, लेकिन जैसे हम कह चुके हैं धर्म के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि ये गोपियां भी श्री कृष्ण के ही शक्तियां हैं, उनके अंग हैं। लेकिन और एक महत्वपूर्ण बात आज आपसे बताना चाहते हैं, वो ये है कि वृंदावन में जो गोपियां थीं, वो सीधे गोलोक वृंदावन से अवतीर्ण हुई थी, विशेष करके जो नित्य सिद्ध गोपियां हैं। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे इस वृंदावन और उस वृंदावन के बारे में। भगवान के धाम में जो वृंदावन है वो यहां इस धरती में प्रकट हो जाता है और इसको भी वृंदावन कहते हैं। दोनों में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, ये वृंदावन और वो वृंदावन। फिर भी चर्चा करना आवश्यक है और थोड़ी गहराई में, क्योंकि इससे ही स्पष्टीकरण विषय का हो सकता है। इस वृंदावन को हम भौम वृंदावन कहते हैं क्योंकि यह भूमि पर अवतीर्ण हुआ था, और उस वृंदावन को हम कह सकते हैं पर व्योम वृंदावन, के आध्यात्मिक आसमान का वृंदावन। हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं है, फिर भी यहां पर भूमि में इस भौतिक सृष्टि में रहने वाले बद्ध जीवों की दृष्टि सही नहीं होती है, उनका हृदय शुद्ध नहीं होता है, इसलिए वो सही वृंदावन को देख नहीं पाते हैं, उनका अधिकार नहीं होता है सही वृंदावन को देखने के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर ने गीत गाया है, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हो बे मन, कबे हम हे रबो श्री वृंदावन। वो कहते हैं कि हे प्रभु, वो दिन कब आएगा जब मेरा हृदय भौतिक इच्छाओं से कामनाओं से शुद्ध हो जाएगा और मैं असली वृंदावन को जैसे है वैसे देख पाऊंगा और समझ पाऊंगा। तो क्योंकि हमारी दृष्टि शुद्ध नहीं है, हम इस भौम वृंदावन को परव्योम वृंदावन समझ नहीं सकते हैं। हम जब यहां वृंदावन में जाते हैं, हम देखते हैं यहां भी वैसे ही बंदर हैं और रिक्शा है और भीड़ है और प्रदूषण है और गंदगी है, बहुत सी चीजें हम देखते हैं, हमारी बाह्य दृष्टि से देखते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि इस वृंदावन, ये वृंदावन को वो वृंदावन के समान कैसे, ये एक जैसे कैसे बोलते हैं, क्या वहां के वृंदावन में भी ऐसे ही है? तो ऐसे विचार हमारे मन में हो सकते हैं, परंतु क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है इसलिए हम इस वृंदावन को ठीक से नहीं जान पा रहे हैं। हम देख नहीं पाते हैं कि भौम वृंदावन और परव्योम वृंदावन में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। जब हमारी दृष्टि पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी तब इस बात का अनुभव हम कर पाएंगे। अब फिर भी थोड़े बहुत अंतर हैं इस भौम वृंदावन में और गोलोक वृंदावन जो कि परव्योम में है। अब ये जरा ध्यान से सुनिएगा, शायद आप ये सब पहली बार सुन रहे होंगे। यहां श्री कृष्ण असुरों का वध करते हैं, सही है? तो क्या वहां परव्योम वृंदावन में असुर हो सकते हैं? तो क्या वो असुरों का वध वहां कर सकते हैं? दूसरी बात, श्री कृष्ण यहां जन्म लेते हैं भौतिक सृष्टि में, क्या वो वहां जन्म लेते हैं उनके धाम में? यहां पे श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा और द्वारका जाते हैं, इसलिए थोड़े समय के लिए विरह होता है, फिर मिलन होता है, लेकिन वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। गोलोक वृंदावन के बारे में बताया है कि वृंदावन को छोड़कर श्री कृष्ण एक कदम भी बाहर नहीं लेते हैं। तो फिर ये सब लीलाएं भी क्या परव्योम वृंदावन में होती हैं? आपका क्या विचार है? दो प्रकार की लीलाएं हैं, एक को कहते हैं नित्य लीला, दूसरे को कहते हैं नैमित्तिक लीला। नित्य लीला वो है जो भगवान श्री कृष्ण पर व्योम वृंदावन में करते हैं, गायों को चराना, गोपियों के साथ में रासलीला करना, नंद महाराज माता यशोदा के संग में रहना, उनको आनंद देना, ये सब लीलाएं भगवान वहां भी करते हैं और उनको यहां भौम वृंदावन में भी करते हैं। थोड़ी लीलाएं हैं जिनको नैमित्तिक लीला कहते हैं, जैसे असुरों का वध करना, जन्म लेना, ये यहां पर होती हैं, वहां पर नहीं होती हैं परव्योम वृंदावन में। फिर भी वहां माता यशोदा और नंद महाराज को ऐसे प्रतीत होता है कि कृष्ण ने हमसे जन्म लिया है और कृष्ण हमारा बच्चा है। वहां परव्योम वृंदावन में भी ये एक वात्सल्य भाव विद्यमान रहता है, ये नष्ट नहीं होता। हालांकि श्री कृष्ण का जन्म नहीं होता वहां जिस तरह से यहां होता है, उनका प्राकट्य इस प्रकार से नहीं होता, फिर भी नंद महाराज माता और माता यशोदा को ऐसे लगता है कि श्री कृष्ण ने जन्म लिया है हमसे और हम कृष्ण के माता और पिता हैं। ये योग माया द्वारा निर्मित एक भाव है जो माता यशोदा और नंद महाराज के मन में रहता है वात्सल्य रस का पोषण करने के लिए। क्योंकि जब गोलोक वृंदावन में कृष्ण का जन्म नहीं होता तो फिर माता पिता होंगे कैसे? माता पिता नहीं होंगे तो वात्सल्य रस का आस्वादन कैसे होगा? इसलिए भगवान की योग माया शक्ति रस की वृद्धि करने के लिए, रस का पोषण करने के लिए ऐसी भावना उनके शुद्ध भक्तों के हृदय में प्रकाशित करती हैं। तो नंद महाराज और माता यशोदा को लगता है कि हाँ, हुआ तो था जन्म कृष्ण का और कृष्ण तो हमारे बच्चे हैं। लेकिन यहां पर उसी धारणा को, उसी भावना को थोड़ा एक प्रकार का स्थूल रूप दिया जाता है, वो भी आध्यात्मिक ही है परंतु एक व्यक्तित्व दिया जाता है। माता यशोदा को लगता है कि जैसे एक साधारण इस दुनिया की महिला बच्चे को जन्म देती है, तो ऐसे माता यशोदा को यहां भौम वृंदावन में लगता है कि मैंने कृष्ण को जन्म दिया। तो इस धारणा को, इस भावना को अभिमान कहते हैं। ये एक आध्यात्मिक धारणा है। तो वो आध्यात्मिक धारणा गोलोक वृंदावन पर व्योम वृंदावन में रहती है और यहां उसका थोड़ा सा विशेष स्थूल रूप हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से असुर तो गोलोक वृंदावन में, परोव्योम वृंदावन में तो हो ही नहीं सकते। वहां तो केवल भक्त ही निवास करते हैं जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के। फिर भी एक अभिमान रहता है, एक धारणा रहती है, एक विचार रहता है कि असुर आएंगे, कृष्ण की रक्षा मुझे करनी चाहिए, कोई असुर आ सकते हैं। हम वो कल ही थे ना, वो आए थे, वो दूसरा भौमासुर, ये बकासुर आया था, अघासुर आया था, एक भावना रहती है। हालांकि वास्तव में असुर नहीं रहते, लेकिन सबके रस का आनंद बढ़ाने के लिए, उनके सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस आदि का माधुर्य बढ़ाने के लिए एक धारणा रहती, अभिमान रहता है। और वही अभिमान को एक व्यक्तित्व दिया जाता है यहां इस भौम वृंदावन में। ठीक उसी प्रकार से जहां विरह और मिलन की बात होती है तो ऐसे एक धारणा होती है कि श्री कृष्ण हमसे दूर जा नहीं रहे हैं, लेकिन एक भावना रहती है वो यहां प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे वैष्णव आचार्यों ने समझाया है, परव्योम वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत में गोपियों के कोई पति नहीं होते हैं। फिर से कहिएगा, परव्योम आध्यात्मिक वृंदावन में गोपियों के पति नहीं होते हैं, लेकिन परंतु मगर बट परंतु क्या उनको ऐसे लगता है कि हमारी पति हैं? एक धारणा होती जिसको अभिमान कहते हैं, उनको ऐसे लगता है। ऐसे क्यों लगता है? यह भी योग माया का कार्य है। योग माया माधुर्य रस को बढ़ाने के लिए यह भावना गोपियों के मन में डाल देती है। वैसे क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण की ही शक्तियां हैं और वहां कोई विवाह संस्कार का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए एक दृष्टि से देखा जाए तो गोपियों का संबंध श्री कृष्ण के साथ स्वकीय ही है। परंतु स्वकीय और परकीय दोनों में परकीय में ज्यादा रस होता है, इसलिए योग माया गोपियों के मन में यह भावना रखती है कि हमारे भी कोई पति हैं, लेकिन हमारा श्री कृष्ण के साथ संबंध है। तो वहां भी परकीय रस है, परंतु इस ढंग से है। और वही जो गोपियों की धारणा होती है जिसको अभिमान कहते हैं कि मेरे कोई पति हैं, वो अभिमान को एक व्यक्तित्व दिया जाता है यहां भौम वृंदावन में। इसलिए वहां की भावना, एक गोपी की भावना है वहां कि मेरे पति हैं गोप गोवर्धन, तो ऐसे उनकी भावना है। तो वो भावना का एक मूर्तिवान रूप यहां भौम वृंदावन में आ जाता है और यहां उनको लगता है कि मेरा विवाह इनसे हुआ है। परंतु जब विवाह होता है तो वो पति का स्पर्श इस गोपी से नहीं होता, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जब ये नित्य सिद्ध गोपी रासलीला करने जाती है कृष्ण के साथ में, तो योग माया द्वारा निर्मित एक दूसरा शरीर उस पति के साथ रह जाता है। तो पति को पता नहीं चलता है कि मेरी पत्नी है कि डुप्लीकेट है कि कौन है। इसलिए गोलोक वृंदावन में स्वकीय और परकीय दोनों है। मूल रूप से स्वकीय है लेकिन भाव परकीय है। ये एक धारणा मात्र है उनके मन में कि हमारे कोई पति हैं, ताकि वो रस बढ़े। परकीय रस का आकर्षण ज्यादा रहता है, इसलिए एक भावना है और ये केवल भगवान के लिए है। तो यहां पर वो गोपियों का जो अभिमान है, हर एक गोपी का जो भिन्न भिन्न अभिमान है कि मेरे भी कोई पति हैं नहीं, लेकिन जो भावना है वो भावना यहां एक रूप लेती है। वो भावना एक व्यक्ति बन जाते हैं यहां पर भौम वृंदावन में। कोई अभिमन्यु बन जाते हैं, कोई गोप गोवर्धन बन जाते हैं, कोई अलग 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 व्यक्ति बन जाते हैं। स्पष्ट है बात कि ज्यादा मुश्किल है समझना? इसलिए यहां पे जब गोपियां श्री कृष्ण से रासलीला करने जाती हैं, तो श्री कृष्ण ही उनके पति हैं। ये जो उनके तथाकथित पति हैं, वो वास्तव में तथाकथित ही हैं, सच्चे पति नहीं हैं उनके। इसलिए कोई दोष नहीं दिया जा सकता गोपियों को कि उन्होंने विवाह के बाहर संबंध रखा। यह तो केवल एक औपचारिकता थी और उस रस को यह बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसे किया, क्योंकि दुनिया में इस भौतिक सृष्टि में विवाह आदि की रीत होती है। इस भौतिक जगत में गोलोक परव्योम गोलोक वृंदावन में इसकी क्या आवश्यकता है? तो इस दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में गोपियों और कृष्ण का संबंध में कोई भी त्रुटि या कोई दोष बिल्कुल नहीं है, तनक भी नहीं है। स्वकीय और परकीय, ये दो शब्द हमें याद रखने हैं। विरह मिलन, ये भावना भी ऐसे ही परव्योम वृंदावन में रहती है। उनको लगता है कि श्री कृष्ण जा रहे हैं, लेकिन नहीं जाते वैसे। ये केवल सब रस को बढ़ाने के लिए है, और ऐसे परव्योम वृंदावन में लीलाएं भगवान की चलती हैं। हमारा भी उद्देश्य है कि एक दिन हम भी वहां गोलोक वृंदावन में जाएं और श्री कृष्ण और उनके पार्षदों के सानिध्य की प्राप्ति करें। तो ये एक और कारण है जिससे या बात है जिससे हम समझ सकते हैं कि रासलीला में कोई दोष नहीं है, बल्कि वो सर्वोत्कृष्ट लीला भगवान की है। और ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत गहरा विषय है, ये सूक्ष्म विषय है। तो अगली बात जिसकी चर्चा हम करना चाहेंगे वो ये है कि अंत में जब ये पांच अध्यायों की चर्चा सुखदेव गोस्वामी करते हैं और 33वें अध्याय अर्थात 5वें अध्याय के अंत में पहुंच जाते हैं, तो वो बताते हैं कि श्री कृष्ण की लीला करने का उद्देश्य होता है सबका मन उनकी ओर आकर्षित करना, और इसलिए वो ऐसी लीलाएं करते हैं। इसके बारे में सुंदर श्लोक यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है वास्तव में सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो। इसका हम पाठ करते हैं। ये 10वें स्कंद के 33वें अध्याय से 36वां श्लोक है। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। हाँ बोलिएगा।
अनुग्रहाय भक्तानां
अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहम् आश्रितः भजते तादृशी क्रीडा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। जब भगवान अपने भक्तों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए मनुष्य जैसा शरीर धारण करते हैं तो वो ऐसी क्रीड़ाएं करते हैं जिनके विषय में सुनने वाले आकृष्ट होकर भगवत परायण हो जाएं। तो भगवत परायण सबको कराना ये भगवान का उद्देश्य है, इसलिए भगवान आते हैं। हां, भगवान दुष्कृताम च विनाशाय च दुष्कृताम, अवश्य दुष्टों का विनाश करने आते हैं। परित्राणाय साधु नाम, हाँ साधुओं की रक्षा करने आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की रक्षा करने आते हैं, ये सब ठीक है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? या श्रुत्वा तत्परो भवेत। तत्परः, उनका उद्देश्य है कि मैं जब लीला यहां करूंगा आके, यहां श्रुत्वा, तो इस दुनिया के लोग इनको सुनेंगे इनके बारे में, और सुनकर मेरे भक्त बनेंगे। इसलिए भगवान एक मनुष्य समाज में आके नर लीला करते हैं, मानो कि वो भी एक हमारे जैसे साधारण मनुष्य हैं। अनुग्रहाय भक्तानाम, उनका ये अनुग्रह है, उनकी अनुकंपा है, उनकी कृपा है, विशेष करके उनके भक्तों के ऊपर, कि वो यहां एक मनुष्य की तरह प्रतीत कराते हैं अपने आप को, और आके मानुषम देहम आस्थितः, और जो व्यक्ति इस प्रकार से इन क्रीड़ाओं को सुनेगा ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक, उसके मन में अवश्य श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो रासलीला सर्वोच्च लीला है। तो भगवान जब यहां रासलीला करते हैं, तो रासलीला प्रदर्शित करने का उद्देश्य भी यही है कि वो हमारा मन आकर्षित करें, हमको दूर करने के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे मन में कोई संकोच हो जाए, कोई संशय हो जाए कि भगवान ने ऐसी लीला क्यों की, बल्कि इसका विपरीत भगवान का कारण, हमको दूर करने के लिए नहीं, हमको और पास बुलाने के लिए, हमारे हृदय में भक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने किया है। भगवान के अनेक अवतार हैं, अनगिनत अवतार हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार मछली के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, कभी कभी आधा नर आधा सिंह नरसिंह अवतार में भगवान प्रकट होते हैं, कूर्म रूप में प्रकट होते हैं, हंस रूप में प्रकट होते हैं। इस भौतिक सृष्टि में प्रकट होते समय उनकी तरह तरह के रूप धारण करते हैं और लीला करते हैं। जो भी कार्य भगवान करते हैं उसे लीला कहते हैं, और इन लीलाओं के बारे में सुन के हमारा हृदय शुद्ध होता है और भक्ति बढ़ती है हृदय में, और अंततः हम इस योग्य हो जाते हैं कि इस जन्म मृत्यु के चक्र को छोड़कर हम भगवान के धाम में लौट के जा सकते हैं। इन समस्त लीलाओं में से भगवान की जो नर लीला है वो सबसे मधुर मानी जाती है। नर लीला में सबसे दो प्रसिद्ध उनके रूप हैं, कृष्ण और रामचंद्र, और श्री रामचंद्र की लीलाओं से भी अधिक मधुर श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। श्री कृष्ण भी अनेक स्थानों में लीला करते हैं, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, लेकिन इन स्थानों में से उस भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सबसे मधुर वृंदावन में होती हैं। वृंदावन में भी भगवान श्री कृष्ण अनेक तरह की लीलाएं करते हैं, उनकी सेवा उनके अनेक भक्त करते हैं, जैसे चित्रक पत्रक आदि। माता यशोदा की सेवा में भी वो तत्पर रहते हैं, कृष्ण के सेवक हैं, दास्य भाव में कृष्ण की सेवा करते हैं। गोलोक वृंदावन में अपने ग्वाल बालों के मित्रों के साथ वो सख्य रस का आस्वादन करते हैं, अनेक लीलाएं करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। नंद महाराज और माता यशोदा श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं, उनके साथ वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान श्री कृष्ण करते हैं। तो इन सारे लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण बहुत आनंद लेते हैं, और इन सब लीलाओं को सुन के अवश्य हमारा मन शुद्ध हो जाएगा और वृंदावन की ओर आकर्षित होगा। लेकिन वृंदावन की लीलाओं में से भी सर्वश्रेष्ठ लीला भगवान की गोपियों के साथ में है, मधुरी रस में। और मधुरी रस में भी रासलीला सबसे प्रसिद्ध लीला है। तो हम समझ सकते हैं कि रासलीला के बारे में यदि हम सुनेंगे तो हमारा हृदय कितना शुद्ध हो जाएगा। परंतु रासलीला सुनने के लिए तैयारी जो चाहिए हमें, यह महत्वपूर्ण बात है। यदि हम सही भावना से सुनेंगे रासलीला को, जैसे सबसे पहले हम चर्चा कर चुके थे पहले ही दिन पर कि योग्यता चाहिए, तब जब हमारी तैयारी होगी इस रासलीला की कथा को ग्रहण करने के लिए, जब हम परिपक्व हो जाएंगे अध्यात्म जीवन में, तब रासलीला के बारे में सुनने से अवश्य कृष्ण प्रेम गोपियों के पद चिन्हों में चल के प्रकट हो जाएगा हृदय में शनै शनै। लेकिन तब तक हमें तैयारी करनी चाहिए, इसलिए 8 दिन लगाए हैं अभी रासलीला तत्व के बारे में केवल चर्चा करने के लिए, ताकि हम समझ जाएं कि रासलीला क्या चीज है। रासलीला का वर्णन अभी तक नहीं हुआ है, नहीं हम करने वाले हैं। केवल ये कि रासलीला है क्या, ये बस केवल इतना ही चर्चा करना है। रासलीला के अंदर प्रवेश करने के लिए ना हमारा अधिकार है, ना हम समझते हैं, और किसी हो सकता है किसी का भी, लेकिन हमारा तो नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। केवल तत्व का निरूपण करने का प्रयास रहा है। तो भगवान की समस्त लीलाओं में से ये लीला जो इतनी ऊंची है, इतने उसको सुन के, इस लीला को सुन के तो सोच लीजिए कि कितना शुद्धिकरण हमारा होगा, किस तरह से हमारे हृदय में भी कृष्ण के प्रति वृंदावन के भाव में एक प्रेम और भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का ये विशेष उद्देश्य है, हम सबको वो आकर्षित करना चाहते हैं। अब देखिए, एक छोटा सा बच्चा भी जब तोतली बोली में बोलता है तो आसपास के सभी लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। एक बच्चा किसी घर में जन्म लेता है तो दिन रात उस घर में बच्चे के बारे में ही बातचीत चलती है। बच्चे ने आज कुछ बोला, बच्चे ने आज ये कहा, टैक्सी रिक्शा, बच्चे ने आज पहली बार कहा, आज बच्चे ने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, आज वो खड़ा हो गया, कल वो बैठा, दिन रात शिशु कथा चलती है। और जब भी कोई घर में आता है वो भी उसी कथा को सुनते हैं, वो भी उसी कथा को बात करते हैं, अरे कितना मीठा है, कितना ये है। तो एक साधारण मनुष्य जाति का बच्चा जब इतना सबको आकर्षित कर सकता है अपनी तोतली आवाज से, अपनी क्रीड़ाओं से, तो भगवान जब बच्चे के रूप को धारण करेंगे, पहले से ही भगवान सर्वाकर्षक है, तो ऐसे वो रूप धारण करेंगे तो विचार कीजिए कि वो कितने आकर्षक हो जाएंगे। और आजकल बच्चों की लीलाओं से ज्यादा लोगों को इस दुनिया में सिनेमा आदि की बहुत रुचि है। हर घर में भी आजकल टीवी चलता है और वहां सिनेमा चलती हैं, और वहां भी नायक और नायिका के बीच में संबंध होता है, कोई ना कोई गाने गाते हैं, कुछ भी करते हैं, और सारा परिवार बैठ के देखता है। ये आजकल का मनोरंजन है। तो वो इतना आकर्षित होते हैं कि दिन भर टीवी देखते हैं, कुछ उनको परिवार को कहीं कुछ मनोरंजन कराना है तो सिनेमा के घर में जाएंगे, वहां यही सब देखेंगे। तो इस दुनिया में भी बच्चों से ज्यादा आकर्षित लोगों को करते हैं ये नायक और नायिका की संबंध। उपन्यास में भी वही बात, सिनेमा में वही बात, टेलीविजन में वही बात, चर्चा में वही बात। तो जब श्री कृष्ण एक नायक बनेंगे और गोपियां नायिका बनती हैं, तो विचार कीजिए वो कितना आकर्षक होगा। तो ये दुनिया की चीजें, ये जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, प्रतिबिंब मात्र हैं। तो प्रतिबिंब इतना आकर्षक होगा तो जो मूल रूप है, मूल लीला है, वो कितनी आकर्षक होगी। तो ऐसे आकर्षक लीलाओं को भगवान हमें प्रदर्शित करना करा के ये भुला देना चाहते हैं कि यहां की झूठे नायक और नायिकाओं की कथाओं को भूल जाओ, अब असली नायक तो मैं हूं। असली नायक और मेरी जो नायिकाएं हैं, जो गोपियां हैं, उनकी जो लीला है इनके बारे में सुनो, तो इस संसार के नायक और नायिकाओं की बातें भूल जाओगे। ये उद्देश्य है। तो भगवान श्री कृष्ण की रासलीला इस संसार के पुरुष और स्त्री के बीच में संबंध तो है ही नहीं, बल्कि भगवान ऐसी रासलीला करते हैं ताकि इस संसार के पुरुष स्त्री संबंध को हम भूल जाएं, इसके लिए करते हैं। और जब हम इनको सुनेंगे तो वास्तव में हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। प्रभुपाद जी, वैसे भागवत में भी कहा गया है, और ये अगला श्लोक हम देखेंगे, इसको घुमा लेंगे आप बोर्ड को कृपया। भागवत में कहा गया है कि रासलीला का वर्णन सुनने से, रासलीला के बारे में सुनने से हमारे हृदय में जितने भी भौतिक कामनाएं हैं, काम वासना भी है, वो भी खत्म हो जाती है। प्रभुपाद जी ने एक बार एक शिष्य को चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि अपने हृदय से इन सब चीजों को दूर करना है, काम वासना आदि, तो रासलीला का चिंतन करो, रासलीला के बारे में सुनो, पढ़ो। तुम सोचो कि कृष्ण रासलीला कर रहे हैं, ये सोचो तो तुम्हारे लीला यहां के भूल जाओगे कि मुझे भी ऐसे यहां संसार में करना है, ये भावना तुम्हारी चली जाएगी। जब तुम विचार करोगे कि कृष्ण गोपियों के साथ में लीला कर रहे हैं, ये शुद्ध भावना से सोचोगे, तो यहां प्रतिबिंब के कार्यों को करना भूल जाओगे। इसलिए ये एक अंतिम श्लोक है इस रास पंचाध्याय का। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है। ये वास्तव में इन पांच अध्यायों का अंतिम श्लोक है, 33वें अध्याय का अंतिम श्लोक। वैदिक साहित्य में एक रीति है कि जब कोई विषय बताया जाता है, खास करके जो अच्छा विषय है, फिर अंत में एक या दो श्लोकों में उस कथा का श्रवण करने का लाभ बताया जाता है, जिसको फलश्रुति कहते हैं। फलश्रुति अर्थात उस चीज का श्रवण करने का फल हमें क्या मिलेगा। भौतिक विषयों के बारे में चर्चा करने से या सुनने से क्या फल मिलेगा, हमारी भौतिक कामनाएं बढ़ जाएंगी, हमारा मन और भी विचलित हो जाएगा, हम और बेचैन हो जाएंगे। ये संसार के नायक और नायिकाओं की कथा सुनने का फल है। तो सिनेमा टीवी आदि देखने की फलश्रुति क्या है कि हमारा मन और भी विचलित हो जाएगा, हमारी वासनाएं बढ़ेंगी, हमारी भौतिक कामनाएं इच्छाएं बढ़ेंगी। परंतु भगवान की रासलीला सुनने से फलश्रुति क्या है, क्या लाभ मिलेगा हमें, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में करते हैं।
विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो नुष्णुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृद्रोगमाश्वपहिनोऽत्यचिरेण धीरः विक्रीडतं व्रजवधूभि क्षमा कीजिए विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो नुशृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृद्रोगमाश्वपहिनोऽत्यचिरेण धीरः विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो नुशृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृद्रोगमाश्वपहिनोऽत्यचिरेण धीरः
बोलिएगा
व्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो नुशृणुयाद् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृद्रोगमाश्वपहिनोऽत्यचिरेण धीरः विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो नुशृणुयात् प्रतिलभ्य कामम् हृद्रोगमाश्वपहिनोऽत्यचिरेण धीरः
अनुवाद ध्यान से सुनिएगा जो कोई वृंदावन की युवती गोपियों के साथ भगवान की क्रीड़ाओं को श्रद्धापूर्वक सुनता है या उनका वर्णन करता है वह भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। इस तरह है वह शीघ्र ही धीर बन जाएगा और हृदय रोग रूपी काम वासना को जीत लेगा। तो भौतिक नायक और नायिकाओं की कथा सुनने से जो परिणाम होता है उससे बिल्कुल विपरीत परिणाम भगवान और गोपियों के साथ में लीला सुनने से होता है। तो देखिए यह भी और एक प्रमाण है कि रासलीला कोई साधारण इस दुनिया की लीला नहीं है। नहीं तो रासलीला सुन के भौतिक कामनाएं हमारी बढ़ जाती, लेकिन बढ़ेंगी नहीं यदि हम श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक भक्ति पूर्वक इसको समझने का प्रयास करेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे इसके बारे में, तो हम शीघ्र ही भक्त बन जाएंगे, अच्छी तरह से भक्ति में प्रगति करेंगे और हृदय रोगम, हृदय का जो रोग है विशेष करके जो भौतिक कामनाएं हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी। आशु अपहिनोति, आशु मतलब तुरंत बहुत ही जल्दी, अपहिनोति मतलब उसको भगा देना, खत्म कर देना, अचिरेण धीरः, और व्यक्ति बहुत ही जल्दी धीर बन जाएगा। धीर व्यक्ति कौन है? जिसका मन शांत है, जिसका मन भौतिक इच्छाओं से विचलित नहीं है। तो रासलीला सुनने का फल श्रुति क्या है कि हमारे हृदय के अंदर भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, हम धीर बन जाएंगे और हृदय रोग से मुक्त हो जाएंगे। हृदय रोग मतलब जो भी भौतिक इच्छाएं मन में हैं वो हमारे हृदय में खत्म हो जाएंगे। तो ये है भगवान की रासलीला। तो कोई कैसे इस चीज को भौतिक कह सकता है? केवल अज्ञान के कारण लोग ऐसा कहते हैं। क्योंकि वो तत्व को नहीं जानते हैं। तो आज की कथा यही समाप्त करते हैं, लेकिन हाँ विषय समाप्त नहीं हुआ अभी तक, कल भी है, कल भी विषय को जारी रखना है, कल भी एक महत्वपूर्ण बात के बारे में चर्चा करनी है, रासलीला के बारे में। हरे कृष्ण। तो आपके कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण।
शास्त्रों में ऐसे अनेक घटनाएं हैं जिसके ऊपर भक्तों को भी विश्वास करना कठिन हो जाता है। जैसे कि एक भक्त बोल रहे थे कि जैसे कि महाभारत में बताया गया कि द्रौपदी का वस्त्र हरण, तो कलयुग में भी कोई ऐसा नहीं करेगा, तो वो समय ऐसा कैसा हो गया? तो इसके बारे में वो उनका मत है कि वो ऐसा है, किसी ने लिखा है, ज्यादा कड़ाके लिखा है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत।
इतने जन्मों से हमारी आदत हुई है कि हम हमारी इंद्रियों के बताए हुए बातों पर विश्वास करते हैं, और इसलिए इस जन्म में जब हम भक्ति करने के लिए आते हैं और हम सुनते हैं कि हमें इंद्रियों की बातें नहीं शास्त्रों की बातें माननी चाहिए, तो अवश्य थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। परंतु भक्तों के संग में आके शास्त्रों में हमारी श्रद्धा बढ़ती है। बल्कि यही एक अंतर होता है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम भक्त में। श्रील रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि शास्त्रों में श्रद्धा, ये एक बात है जो अंतर है नौसुखीय भक्त में और एक आगे बढ़े हुए भक्त में। जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो उत्तम भक्त होते हैं, उनकी श्रद्धा सुदृढ़ होती है शास्त्रों में। जो नौसुखिया हैं, जिनकी श्रद्धा कोमल है, कभी कभी उनके मन में संशय भी आ जाता है, ये कैसे हो सकता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन बस भक्तों के संग में आते रहने से, हमारे भक्ति की विधियां करते रहने से हमारे अंदर शास्त्रों के प्रति श्रद्धा अवश्य हो जाएगी। जहां तक द्रौपदी के वस्त्र हरण की लीला की बात है, ऐसे तो कितने सारे चीजें हुई हैं जो असुरों ने क्या नहीं किया है। वैसे सीता देवी का अपहरण करके ले जाना रावण द्वारा, ये तो उसके भी पहले हुआ था त्रेता युग में। ये तो द्वापर युग की बात है कि द्रौपदी के वस्त्र हरण हुआ था। सीता देवी का अपहरण करके ले जाना ये त्रेता युग में हो, तो उसके भी पिछले युग में। तो ऐसे घटनाएं भौतिक सृष्टि में देखी जाती हैं, और ये सब भगवान की लीलाएं हैं। हां, जो भौतिक व्यक्तियों के बीच में होता है उसकी बात अलग है, परंतु भगवान की लीला के अंतर्गत जो होते हैं ये भगवान की योजना से होते हैं, हम सबको बहुत कुछ सिखाने के लिए। हाँ, प्रश्न ये है कि रासलीला सुनने के से हृदय रोग चले जाता है, परंतु रासलीला सुनना मना है। सही है और नहीं भी है। सुनना तो चाहिए, लेकिन श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। ये शब्द यहां बताया गया है ना, श्रद्धान्विता। तो उस श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सुनना शुरू करेंगे फिर मन में संशय आए, अरे ऐसे कैसे, अरे वैसे कैसे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जब तक श्रद्धा पूर्वक शब्द इसको हम हृदय में स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हम तैयार नहीं हैं रासलीला का वर्णन सुनने के लिए विस्तार में। हाँ, संक्षेप में बता सकते हैं कि श्री कृष्ण गोपियों के साथ में थे, रास मंडल उन्होंने बनाया था, ठीक है, परंतु श्रद्धा पूर्वक। तो श्रद्धा मन में जागृत करने के लिए तत्व का निरूपण करना, तत्व को समझ लेना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत को प्रथम स्कंध से शुरू करना चाहिए पढ़ना, बल्कि उसके पहले भगवद गीता, फिर श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे करते करते दशम स्कंध तक, फिर कृष्ण जन्म से लेकर फिर रासलीला तक आगे, और फिर द्वारका लीला इत्यादि है। सो क्रमशः हमें आगे बढ़ना चाहिए, फिर अवश्य हम योग्य हो जाएंगे रासलीला सुनने के लिए। और ऐसा नहीं है कि केवल रासलीला सुनने से ही हमारा हृदय रोग नष्ट हो जाएगा और अन्य लीला सुनने से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब भगवद गीता पढ़ेंगे, भागवत के अन्य स्कंधों को पढ़ेंगे और सुनेंगे, तब भी हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। बल्कि भागवत और गीता को पढ़ना, सुनना इत्यादि, ये सब करके हम अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन की लीलाओं को सही तरह से समझने के लिए। ठीक है, माइक नहीं चला।
हरि बोल।
हरे कृष्णा।
हाँ बोलो, आप बोलिए, इसलिए बोल रहा हूँ। जैसे आपने सीसी में बताया था कल श्लोक का, उसे याद आ रहा है कि नाग पत्नी ने जैसे भगवान से प्रार्थना की थी कि बोला था कि ये नाग कालिया इतना अहंकारी है, फिर भी आपकी कैसी कृपा हुई। तो मुझे पता नहीं कि बेलगाम के लोग भी इतने यह है, तो ये रासलीला का वर्णन, रासलीला का नहीं तो ये
तत्व,
हाँ तत्व, तो ये आपकी अहितु की कृपा है, इसीलिए तो हम
प्रश्न करने चाहिए प्रश्न के लिए उठे
तो
अच्छा।
हरे कृष्ण पूरा नहीं हुआ, थोड़ा है अभी,
नहीं यहाँ आगे प्रश्न है। अच्छा, यहाँ प्रश्न ये है, चैतन्य महाप्रभु भी श्रीमती राधा रानी के भाव में आते हैं, तो क्या चैतन्य चरितामृत का श्रवण करना राधा कृष्ण श्री कृष्ण की रासलीला को सुनने के बराबर है? क्या कलयुग में लोग इस योग्य हैं? अवश्य, क्योंकि लोग रासलीला सीधा सुनने के लिए योग्य नहीं हैं, इसलिए चैतन्य लीला सुनने से बहुत आसान तरीके से हृदय शुद्ध हो जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो कि श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करके आए हैं, और उनकी लीलाओं को सुन के अवश्य हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो चैतन्य चरितामृत की लीलाओं को विशेष करके जो महाप्रभु ने सबके लिए किए, प्रदर्शित किए, उनके दक्षिण भारत की यात्रा, जगन्नाथपुरी में रहते हुए उनके रथ यात्रा की लीला, जगन्नाथ के सामने उनके दर्शन की लीला इत्यादि, ये सब अवश्य हमें सुनने चाहिए। प्रश्नों को थोड़ा संक्षेप में लिखिए, क्योंकि फिर बहुत समय जाता है पढ़ने में। एक प्रश्न है कि भगवान कृष्ण की रासलीला में ज्यादा दिव्य आनंद कहाँ आता है, भौतिक सृष्टि में या आध्यात्मिक सृष्टि में? दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में भाव तो वही रहता है। ऐसे प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि ऐसे बताया जाता है कि भौतिक सृष्टि की रचना मुख्यतः उनकी आध्यात्मिक जगत की लीलाओं को और भी मधुर बनाने के लिए यह है, और जो बद्ध जीव हैं उनको सुधारने के लिए ये तो एक गौण कारण है। क्या ये सही है? नहीं, दोनों कारण है, दोनों ही कारण बराबर के हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक श्रेष्ठ है या दूसरा। प्रश्न ये है कि यदि यदि कोई भक्त श्रद्धा के स्तर में है या भजन क्रिया के स्तर में है और वो कृष्ण का स्मरण करता है मृत्यु के समय, तो क्या वो गोलोक वृंदावन चले जाएगा या भक्ति के अगले स्तर को प्राप्त करेगा? जब तक हम प्रेमा भक्ति के स्तर को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हम गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते। हाँ, यदि कृष्ण किसी को ले जाना चाहते हैं तो वो अलग बात है, कृष्ण का पूरा अधिकार है। परंतु साधारणतः जब तक व्यक्ति कृष्ण प्रेम की अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक नहीं जा सकते। और अंत में कृष्ण का स्मरण करना भी इतना आसान नहीं है, केवल इसको बहुत गहराई से इसका साधन भजन करने से ही ये संभव हो सकता है। गोलोक वृंदावन जो धारणा या अभिमान तत्व है, क्या इसकी तुलना राजा कुलशेखर के रामायण श्रवण करते समय सीता अपहरण को वर्तमान घटना समझना या एक भक्त के मानसिक सिर बनाते समय वास्तव में उंगली जल जाना, इससे हो सकता है क्या? आध्यात्मिक जगत में जगह और काल का कोई भेद नहीं होता। यहां प्रश्न में यह लिखा गया कि एक बार एक भक्त ध्यान कर रहे थे कि वो भगवान के लिए खीर बना रहे हैं और दूध उबालने के लिए रखा था चूल्हे के ऊपर, तो दूध गर्म हो चुका या नहीं, वो अपने ध्यान में ही उंगली दूध में डाल दिए और दूध इतना गर्म था कि उंगली उनकी जल गई। तब उनका ध्यान भंग हो गया और देखा कि वास्तव में उंगली जली हुई थी, क्योंकि प्रभुपाद जी ये भक्ति रसामृत सिंधु में उदाहरण देते हैं इस लीला का, ये बताने के लिए कि भक्ति आध्यात्मिक स्तर पर स्थित है। तो क्या ऐसी लीला, गोपियों की जो धारणा लीला है, वो यहां प्रकट हो जाती है व्यक्ति रूप में वैसे ही है? नहीं, इसमें थोड़ा अंतर है, ये बहुत सूक्ष्म बात है, तो इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कल की जो नाट्य लीला हुई, इसका निष्कर्ष क्या है? हमें हरे कृष्ण कहना चाहिए, अल्लाह कहना चाहिए? लेकिन नाट्य लीला समाप्त तो हुई नहीं ना, अभी तक आधा ही हुआ था, अभी आधा आज थोड़ी ही समय में नाट्य लीला हम देखेंगे, फिर पता चलेगा हमें। ठीक है, अच्छा, तो अभी थोड़े ही समय में कीर्तन होगा, दर्शन होगा, तो हम कीर्तन शुरू कर लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए कीर्तन करते हैं और फिर नाट्य लीला शुरू होगी।